मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भई अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हम सभी के जीवन को अच्छा बनाने में दान और पूजा इन दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोगों ने दोनों पर विचार किया है। पूजा हम 24 घंटे कर सकते हैं भावनाओं के द्वारा, लेकिन पूजा का जो अनुष्ठान है वो एक निश्चित स्थान पर ही होता है। पूजा की भावना यानी कि पूज्य पुरुषों के प्रति सम्मान का भाव, उनके गुणों का चिंतन, उनके गुणों का स्मरण और उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने की भावना, ये पूज्य पुरुषों का सम्मान है। ये हमारे मन में 24 घंटे बना रह सकता है। सो इस तरह हम पूजा 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन पूजा की जो क्रिया है, पूजा का जो अनुष्ठान है, वो एक निश्चित स्थान पर किया जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने कि अपने पूजा का स्थान स्वयं निर्मित किया है। देवों के यहां पर पूजा का स्थान स्वनिर्मित शाश्वत है। पशुओं को इतनी बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है कि वे अपने भगवान की पूजा के लिए कोई स्थान बना सके। नारकी जीवों के लिए भगवान के स्मरण का भी वक्त नहीं है। एकमात्र मनुष्य पर्याय ऐसी है जहां की मनुष्य ने अपने रहने के लिए तो घर बनाया ही, जहां भगवान को हम अनुभव कर सकें, भगवान की प्रेजेंस को फील कर सकें, इसके लिए भी हमने एक स्थान बनाया जिसे हम जिनालय या कि चैत्यालय कहते हैं। ये दो शब्द जैन दर्शन के हैं, बाकी जो अपन कहते हैं वो सब अलग ही है। मंदिर का प्रचलन ये बाद में हुआ है। ओरिजिनली चैत्य और चैत्यालय या कि जिनालय, जहां जिन बिंब की स्थापना की जाए या कि जैनेन्द्र भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाए, उसे जिनालय या चैत्यालय कहते हैं। चैत्य के मायने प्रतिमा होती है। अकृत्रिम और कृत्रिम दोनों तरह के जिनालय या चैत्यालय होते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय तो देवों के विमानों में और मध्यलोक में भी हैं, पर उनमें सामान्य मनुष्य की गति नहीं है। सामान्य मनुष्य तो अपने कृत्रिम जिनालय निर्मित करके उनमें भगवान की पूजा आराधना करता है। वो जिनालय का महत्व क्या है? जिनालय को भी और जिन बिंब को भी अलग अलग एक देवता मान लिया हमने, तो उस जिनालय की महत्ता क्या है? हम पूजा अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं। जिनालय में ही क्यों अनिवार्य है, और जिनालय का एक अपना अनिश्चित पैटर्न है, उसकी भी क्या आवश्यकता है। जैसे इसको समझने के लिए अपन समझें, रेडियो अपन लगाते हैं तो माइक्रोवेव्स तो सब जगह हैं, लेकिन हर जगह हम उनसे जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि है उसको नहीं सुन सकते, और हमारे पास सिस्टम है रेडियो का, तो हम जब शॉर्ट वेव या कि माइक्रोवेव, मीडियम वेव, ऐसे करके अलग अलग वेव्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसके हिसाब से जब हम उसकी स्टेशन को मिलाते हैं, तब जाकर के वहां से जो रिले किया जा रहा है ध्वनि, वो हम तक आती है। वो एक सिस्टम है। सब दूर वेव्स होने के बावजूद भी जब तक हमारे पास उसको ध्वनि में परिवर्तित करने का कोई सिस्टम नहीं है, तब तक वे वेव्स हमारे काम की नहीं है। ठीक इसी तरह से हमारी अपनी भावनाओं को हमें कहां पहुंच करके और कौन सा ऐसा सिस्टम हम बनाएं जहां से कि हम उनको अपने कल्याण के लिए और कन्वर्ट कर सकें, जहां कि हम भगवान की उपस्थिति को या कि अपने भीतर की भगवत्ता को, क्योंकि संसार में जहां बैठते हैं वहां पर हम राग द्वेष से ही लिप्त रहते हैं, और वहां हमारी अपनी जो भगवत्ता है वो ढकी रहती है, खोई हुई रहती है। एक ऐसी जगह हमने बनाई जहां हम अपनी भगवत्ता को, जहां अपने उस सिद्ध और अरहंत स्वरूप को अनुभव कर सकें, साक्षात सामने भी हमने और मूर्ति में अरहंत और सिद्ध अवस्था की वो मुद्रा, शांत वीतराग प्रशम भाव को धारण करने वाली वो हमने रखी, और वैसा ही हम अपने भीतर फील करते हैं कि हमने भी ऐसा ही अपने जीवन को इन क्षणों में बना लिया है। इसलिए महत्वपूर्ण है वह जिनालय। ये एक तरह के जिनालय जो है वो एनर्जी के रिजर्वायर्स हैं, जहां की हम अपने उस ऊर्जा को अपनी तरफ ले जाते हैं जो कि बाहर के जगत की तरफ जा रही थी, जिससे कि हम सारी दुनिया को जान रहे थे, और अब हमने भगवान पर अपनी सारी एनर्जी को केंद्रित करके और अपने स्वरूप को जानना शुरू कर दिया उसी एनर्जी के माध्यम से। इसलिए मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने पूछा था कि क्या आवश्यकता है मंदिर में ही बैठ के पूजा करने की, शांति तो हमारे घर में भी रहती है लेकिन पवित्रता नहीं रहती। पवित्रता तो मंदिर में ही प्राप्त होगी, शांति तो मरघट में भी होती है, स्मशान में भी शांति होती है, लेकिन वहां पवित्रता नहीं है। पूजा का अनुष्ठान पवित्रता का अनुष्ठान है, उस पवित्रता के अनुष्ठान के लिए क्षेत्र की पवित्रता भी आवश्यक है। इसलिए हमने एक क्षेत्र बनाया और वहां बैठ करके अपने इस पूजा के अनुष्ठान को किया जाए। और इतने ही नहीं, आचार्य भगवंतों ने लिखा कि जब तक वीतराग सभी हमारे सामने ना हो तब तक हम अपने पूजा के अनुष्ठान को नहीं कर सकते। यानी जिनालय खाली जिनालय से काम नहीं चलेगा, उसमें जिन बिंब भी होना चाहिए, तब हमारे पूजा का अनुष्ठान हम कर पाएंगे। ये दोनों ही हमारे लिए आलंबन है जिनके माध्यम से हम अपने भावों को एकाग्र करेंगे। और तीसरी चीज, कोई ना कोई ध्वनि उस पूरे वातावरण में होनी चाहिए जो कि हमारी एकाग्रता में सहायक बने। मंदिर में भाषा का ध्यान नहीं रखा जाता जितना कि ध्वनि का ध्यान रखा जाता। आप किस भाषा में बोल रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी उस भाषा से निकलने वाली ध्वनि वो महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ओंकार की ध्वनि या कि पूजा के जो स्वर, वो निरंतर मंदिर में गूंजते रहते हैं, जो कि मंदिर को पवित्र बनाते हैं। मंदिर में इतनी अधिक ध्वनि होने के बाद भी मंदिर का वातावरण शांत माना जाएगा और पवित्र माना जाएगा। उसे हम शोरगुल नहीं कह सकते, उसे हम नॉइज नहीं कह सकते, वो एक तरह की मेलोडी और एक तरह का म्यूजिक है। लेकिन उसको सुनने के लिए बहुत श्रद्धा चाहिए, तब वो ध्वनि हमें संगीतमय मालूम पड़ेगी, वरना हल्ला मालूम पड़ेगा। हम श्रद्धा से भर के आएंगे तो हर तरफ से जय जयकार की ध्वनि और विभिन्न मंत्रों की, ओंकार की, कोई पूजा कर रहा है, सब धवल मंगल गान रवा कुले, मंगल गान से जो भरा हुआ है ऐसा स्थान बताइए, उसे हम शांत और पवित्र भी कह रहे हैं, जबकि मंगल गान से भरा हुआ तो शांत कैसे हो सकता नहीं। वास्तव में जो पवित्रता और मंगल गान है वे उस वातावरण को बाहर के कोलाहल से बचाए रखते हैं, यही यह कि अंतरंग में उठने वाले राग द्वेष के परिणामों से बचाए रखते हैं, यही शांति है। शांति का मतलब सन्नाटा नहीं है, शांति का मतलब है हमारे भीतर विकल्प शांत होते जा रहे हैं, हमारा मन निर्मल होता चला जा रहा है, यही जो है शांति। कई जगह देख लो, आप मंदिर में बैठते हैं तो यहां वहां की बहुत सारी गंध आती है, इसलिए मंदिर को इस तरह बनाया जाता है कि सेंटर में मूर्ति रहेगी और उसके चारों तरफ इतना स्पेस, और फिर मंदिर के बाद भी और बाउंड्री वॉल अलग से छोड़ दी जाएगी 10-10 फीट चारों तरफ, ताकि शिखर की जो छाया पड़े वो भी उसी एरिया में पड़े उस पर। पहले छतों पर आने का निषेध था, बताइए क्या क्यों निषेध था छतों पर आने का, छत पर छाया पड़ेगी उस पर पैर मत रखना, बताइए सोच दे। भगवान बाहुबली की छाया नहीं पड़ती लोग कहते हैं, तो जो लोग जानकार थे उन्होंने कहा कि ऐसे हो ही नहीं सकता, कोई भी स्थूल चीज हो और उसकी छाया ना पड़े। तो खोजबीन की गई और पता लगा कि मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के साथ साथ आसपास इस तरह मंदिर की डिजाइन की है, उन मंदिरों की छतों पर जा नहीं सकते, और वो छाया 3 बजे से 9 बजे तक किसी न किसी मंदिर के छत पर ही गिरती है, नीचे नहीं गिरती, इसलिए किसी को आज तक नहीं देखने में आई कि इतनी बड़ी बाहुबली भगवान की प्रतिमा की कहीं छाया पड़ी हो, छाया देखने में नहीं आती, छाया सब आसपास बने हुए जिनालयों के छतों पर गिरती। ये इतना ध्यान रखा गया इन सब चीजों का ताकि वो वातावरण और पवित्र विशुद्ध बना रहे। चंदन और ये जो सुगंधित पदार्थ है ये दोनों ही मंदिर में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं। अब तो बड़े बड़े तीर्थों पर एग्जॉस्ट लगाना पड़ रहा है, अतिशय क्षेत्र कहलाते हैं और उन पर एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, बाहरे अतिशय बुरा नहीं मानना, अतिशय क्षेत्र है फिर एग्जॉस्ट फैन की क्या जरूरत, मैं पूछ रहा हूं, कोई जवाब नहीं देता। एग्जॉस्ट फैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमने उसमें जो पूजा अनुष्ठान की पद्धति है उसको जैसा आचार्य भगवंतों ने कहा वैसा अगर हम करेंगे तो वहां पर प्यूरिफिकेशन अपने आप होगा। वहां पर पुराने लोगों ने मंदिर को इसी तरह से बनाया है कि लोग जाकर के वहां धर्म ध्यान करें, चीखें चिल्लाएं नहीं, ढोल धमाका बजाने के लिए नहीं था, मंद मंद स्वरों में मंगल गान करें और पवित्र होकर के जाएं, लबादा ओढ़ करके नहीं जाएं मंदिर के भीतर, शुद्ध वस्त्र पहन करके जाएं मंदिर के भीतर, फिर देखें आप, फिर देखें वहां क्या इंप्योरिटीज हैं, कहां वहां पर ना आपके परफ्यूम की वहां गंध आएगी कि कोई परफ्यूम लगा के ही नहीं जा रहा है, कोई लिपस्टिक और नेल पेंट्स लगा के और कोई हेयर ड्रायर लगा करके कोई जा ही नहीं रहा है कि उसकी गंध आए वहां पर, कोई गंध की बात ही नहीं है क्योंकि नहा धोकर के और चंदन लगाकर 9 स्थानों पर चंदन लगाया, थोड़ा बोला नहीं, शरीर के 9 स्थान है जिन पर जो ध्यान के केंद्र है उन सब पर चंदन लगा लिया है और शरीर को धोकर के अपन आए हैं, और कपड़े कौन से हैं, घर के हैं ही नहीं, कपड़े तो जो है मंदिर के ही हैं जिनमें सुगंध पहले से ही है, वही चंदन की सुगंध उसमें आएगी और भीतर जा रहे हैं, देखिएगा वातावरण अपने आप, वातावरण पवित्र रहेगा और सुगंधित भी रहेगा। धूप खेई जा रही है, दीप जल रहे हैं, लेकिन दीप ऐसे नहीं जल रहे हैं कि उनमें से चट 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 करके और धुआं भी निकल रहा है और उसमें से बड़ी दुर्गंध भी निकल रही है, दीप ऐसे नहीं जलते, दीप जलने का ऐसा था कि उसकी सुगंध ही निकलेगी, धूप जलने का ऐसा था कि सुगंध। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इन सब चीजों का महत्व रहा है, आज भले ही वो कम हो गया हो, लेकिन हम विचार करें कि मंदिर आना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब बातें कहने के पीछे किसी को कोई उलाहना नहीं दे रहा हूं, न मेरी आदत है, न कोई कमेंट कर रहा हूं। जहां जो चल रहा है सब अच्छा चल रहा है, अपने को क्या लेना देना। लेकिन हम कितने ऊंचे सोच वाले लोग थे हम ये जाने, हमने अपने मंदिर को क्या सोच करके निर्मित किया था, और हमने हमारा अपना विज्ञान का कितना हमें ज्ञान था। आज के विज्ञान से भी हम दो कदम आगे थे, जो हमें ये सब चीजें मालूम थी कि किस तरह से हमने चौकोर मंदिर बनाया, लेकिन गोल गुंबद बनाया। चौकोर मंदिर इस बात का प्रतीक है कि किसी भी दिशा में कितने भी चले जाओ, दो समानांतर रेखाएं हैं, ये भी दो समानांतर रेखाएं, ये भी दो समानांतर, तब बना है चौकोर। समानांतर रेखाएं कहीं जाके नहीं मिलती, अनंत पे जाकर के भी नहीं मिलती। तो वो हमारे इंद्री की तरह हैं, इंद्रियों की आशक्ति समानांतर रेखाओं की तरह है, कभी पूरी नहीं होती। और मन, मन तो ऊपर के गुंबद के समान है, जिसमें जो फेंको वो सब गूंज करके हमारे ही ऊपर आता है। मन में जो सोचो दुर्भावना, सोचो दुर्भावना ही हमारे ऊपर आकर बरसेगी। बोल के देख लो मंदिर के गुंबद के नीचे, ओम बोलो तो गुंबद लौटा देगा ओम, गाली दो तो लौट करके आपके ऊपर ही बरसेगी। यहां इस संसार में इस बात का प्रतीक है कि हम गोल गुंबद से, अब तो गोल गुंबद ही बनाई जाती है तो छत के ऊपर बनाई जाती, ताकि नीचे से तो ढकी हुई ऊपर भर गोल दिख रही, होलो नहीं रहता उसमें। नीचे से जो है पूरी की नीचे से कोई झांक के देखे तो गुंबद तक ऊपर दिखाई पड़े, जिसमें ध्वनि की जाए तो गुंबद उसको लौटा दे, इको साउंड उसमें हो। ये सारी चीजें इस तरह से बड़ी साइंटिफिक रखी गई थी, और फिर उसमें अभिषेक की और पूजा की प्रक्रिया के पीछे का साइंस आज थोड़ा सा अपन समझ लें तो समझ में आएगा कि हम लोग कितने रिच थे आर्ट और आर्किटेक्ट में, दोनों चीजों में। हम लोग आर्टिस्ट भी रहे और आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी भी जानते थे। मंदिर को सुंदर ही बनाया और विज्ञान सम्मत बनाया, और उसमें होने वाले अनुष्ठान भी विज्ञान सम्मत भी हैं और बड़े आर्टिस्टिकल भी हैं। अपन समझेंगे मंदिर की जो द्रव्य है वो कल के दिन, कि उसके पीछे क्या साइंस है और उसके पीछे क्या आर्ट है, कला और विज्ञान दोनों है उसमें। आज अपन सिर्फ ये देखें कि मंदिर को बनाने की जो प्रक्रिया रही कितने कलात्मक, ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ऐसी डिजाइनिंग जो आज मंदिरों में है, जिसको कि हम क्षण भर में हटा करके और मार्बल लगा देते हैं, वो फिर नहीं बनने वाली, वो आर्ट। अब क्या आर्ट है मार्बल लगाने में, कोई आर्ट नहीं, उठाया एक टू पीस काटा और लगा दिया। लेकिन पहले लोग कैसे तराशते थे, चांद छेड़ी में मूर्ति को कैसे तराशा होगा, कितनी शार्पनेस, सब में कितनी शार्पनेस, ऐसे लगती जैसे मोम को तराश दिया और है वो स्टोन, और ऐसा स्टोन जिसमें कि चुनावी कैसा स्टोन, मैं तो दंग रह गया अभी इस बार देख करके। पहले मैंने उस दृष्टि से देखा नहीं था, इस बार खड़े होकर के थोड़ा सा देखता रहा कि क्या बात है स्टोन में। स्टोन में बहुत पोरोसिटी है, बहुत सारा जल डालने के बाद भी नीचे गिरता नहीं मालूम पड़ता, बहुत देर तक जल डालने के बाद एक आध दो छोटी वाली घंटियां तो गायब हो जाती हैं, यहां से गिरती हैं यहां तक आकर के हृदय पे गिरती हैं और नीचे तो जाती नहीं, आपने कभी महसूस ही नहीं किया हो, कभी देखा ही नहीं होगा। एक आध दो घंटी तो एब्जॉर्ब भी हो जाएंगी, उसके बाद फिर जब पानी जाएगा तब थोड़ा सा निकलना शुरू, बहना शुरू होगा पानी। वो वातावरण की पूरी नमी को अब, लेकिन उसको चारों तरफ से कवरअप कर दिया, कांच लगा दिया, अब उसमें जो ह्यूमिडिटी है वो भीतर की भीतर रह गई। अब ये अलग चैप्टर है, वो मामला अलग, उधर उसमें नहीं जाएंगे नहीं तो वो झगड़े पड़ जाएंगे। हाँ, वो साइंस का मामला बिल्कुल अलग है, हमने किस तरह से साइंस को बिना समझे डैमेज कर दिया। इस तरह हम आर्ट के साथ साथ सुंदरता भी दिखाई पड़ रही है और उसके पीछे साइंस भी, स्टोन भी हम दूसरा चुन सकते थे, लेकिन स्टोन ऐसा चुना जिसमें जितनी पोरोसिटी है, जितना एब्जॉर्ब कर लेगा वो, ह्यूमिडिटी अपने आप मेंटेन हो और फिर ज्यादा एब्जॉर्ब ना करे, इसलिए इतनी स्मूथ स्किन बना दी, स्किन कह रहा हूं उसको, लेयर वो जो ऊपर की इतनी स्मूथ है कि जितना एब्जॉर्ब करना उतना ही उसके बाद तो खिसकना शुरू हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो गया, एक स्वेटिंग, एक बूंद भी वहां टिकेगी नहीं, इतना स्मूथ। ये सारी चीज है मूर्ति को लेकर के भी, मंदिर को लेकर के भी। मंदिर देख के आया था अभी मैं अजमेर में, क्या दीवाल बनाते हैं लोग, पुरानी 200 साल पुरानी दीवाल कि जिस पर जो है आप पानी डालिएगा तो सीधा नीचे गिर जाएगा, दीवार इस तरह की बनी, ना कोई संगमरमर लगा ना कुछ, लेकिन दीवार को इस तरह से। मैंने पूछा कैसे बनाया उनसे, जो सोनी जी की नथिया में अयोध्या बनी हुई है सोने, उसकी दीवार, तो बोले ये दीवार जो है महीनों लगते हैं, उससे गोले से घिसी जाती है, महीनों महीनों तब जाकर के इतनी। और इस तरह इस मंदिर को हम निर्मित करते हैं जिसमें हम अनुष्ठान करेंगे, बताइएगा तो वो कितना महत्वपूर्ण होगा स्थान और उसमें होने वाला अनुष्ठान। अब देखें अपन कि वो जो अभिषेक और पूजा दोनों एक साथ होने वाली क्रियाएं, पूजा का अंग है अभिषेक। ये बात अलग है कि आज के समय में लोगों ने अपने ज्ञान के चलते अभिषेक को पूजा का अनिवार्य अंग मानना छोड़ दिया है। उनका कहना है कि वो तो सिर्फ मूर्ति पर जमी हुई धूल को साफ आप करने के लिए है, पर जो ऐसा कहते हैं वे भूल जाते हैं कि अकृत्रिम जिनालयों में धूल उल का सवाल ही नहीं है, लेकिन वहां भी अभिषेक होता, वहां कौन सी धूल आ गई जिसको चटाने के लिए रखना। इतनी छोटी सी सड़ी सी चीज थी, जरा सा दिमाग लगा लेते तो शायद ऐसी बात मुंह से नहीं निकलती, लेकिन निकलती, किताबों में लिखी जाती कि पूजा के साथ अभिषेक अनिवार्य नहीं है, वो तो कभी कभी एक आध बार कर लेना चाहिए ताकि धूल हट जाए उस पर, रोज करना चाहिए ये कहना था, ताकि इधर भीतर की थोड़ी धूल रोज हट जाए, कहना ये था। तो उसकी जगह पर कह रहे हैं कि एक हफ्ते में एक दिन करना चाहिए ताकि मूर्ति की धूल हट जाए। नहीं भैया, ये सब बातों में कोई सार नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा का अंग है अभिषेक, स्नपन आवाहननन स्थापन सन्निधिकरण पूजन और समापन, क्षमापना, विसर्जन भी नहीं लिखा, क्षमापन। मेरे से पूजा में जो टूट फूट हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना करता हूं, मेरे पूजा का समापन है ये। अब आप उसको विसर्जन कहो तो कहो, पर लिखा अपने यहां पर समापन, उसी को समापना भी कहते हैं। ये छह अंग हैं पूजा के अनिवार्य, जिसमें से है एक अभिषेक। अभिषेक का साइंस क्या है और अभिषेक के पीछे छिपी हुई भावना क्या है, दोनों समझ लें अपन शॉर्ट में। आप तो समय भी मुझे ध्यान है कि उतने थोड़े से समय में अपन को पूरी बात समझ, बस इतना ही। समझने के बाद भी पहले ही से कह दे रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है अभिषेक, इसलिए अवसर जीवन में एक बार भगवान के अभिषेक का हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए, भगवान को निकट से छूने का। साक्षात भगवान समो शरण में बैठे हो छू नहीं सकते, इंद्र महाराज भी क्यों ना हो, गौतम गणधर स्वामी भी हो वो भी नहीं छू सकते, कोई नहीं छू सकता। इसीलिए तो नंदीश्वर दीप में जाकर के अष्टानिका में सारे इंद्र और अपने परिकर के साथ भगवान का अभिषेक करते हैं, चाहते तो समो शरण में चले जाते, अष्टानिका होते कर लेते समो शरण में, अच्छी दिव्य ध्वनि सुनते, अच्छे स्वाध्याय हो तो तीन समय, कहते उसमें नहीं है मजा, आनंद तो इसमें है कि मैं भगवान को यहां जाकर के अपने हाथ से स्पर्श करूंगा, वो आनंद, वो विशुद्धि। भगवान के स्पर्श करने की विशुद्धि जरा विचार करें तो इंद्राणी सची, बालक भगवान को गोद में लेकर के सिर्फ बाहर इंद्र महाराज को सौंपती है, उतने मात्र स्पर्श से एक भवा उतारी, अगले भाव में आकर के और मुनि बनकर के मोक्ष ली जाएगी सची, मां होने के बावजूद भी। कौन सा पुण्य उसने किया होगा पहले और फिर अकेले बालक भगवान को हाथ में लेकर के बाहर दे दिया, उसमें कितनी विशुद्धि बढ़ती भगवान के स्पर्श करने में, ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस अभिषेक की प्रक्रिया को जैसा करना चाहिए वो अवश्य एक बार करने का अपने जीवन में अवसर प्राप्त करें। तमिलनाडु की पैरासाइकोलॉजी वाली कुछ बहनों ने और इस पर प्रयोग किया, जैन धर्म की अभिषेक की पद्धति को लेकर उनके मन में जिज्ञासा थी कि इसके पीछे विज्ञान क्या है? भावनाएं तो समझ में आ रही, तो उन्होंने प्रयोग किया धातु की प्रतिमा पर। उनका कहना है कि प्रतिमा जो धातु की है उन पर ही रोज जलधारा होनी चाहिए, बाकी जो स्टोन वाली प्रतिमाएं हैं उन पर तो गीले कपड़े से हम पहुंच लें इतना ही पर्याप्त, क्योंकि धातु की अपनी कंडेंसिटी, उसकी अपनी चालकता और प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस, ये दोनों चीजें होती हैं। विद्युत चालकता और विद्युत निरोधकता, जिसको अपन अपनी हिंदी भाषा में कहें, ये दोनों चीजें धातु की होती हैं। और उनने देखा कि ये दोनों चीजें अभिषेक करने के बाद बढ़ जाती हैं, और जैसे ही ये दोनों चीजें उस मूर्ति में बढ़ती हैं तो आयनाइजेशन होना शुरू हो जाता है और पानी दो भागों में विभक्त हो जाता है, H2 प्लस OH आयन। नेगेटिव आयंस निकलना शुरू होते हैं अभिषेक की प्रक्रिया के दौरान, कंडेंसिटी बढ़ने की वजह से, चालकता बढ़ जाने की वजह से। कर रहे हैं अभिषेक और हो रही है आयनाइजेशन की प्रक्रिया, और नेगेटिव आयंस का महत्व क्या है? जितने भी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे हैं, वो सब बहुत अच्छे माने जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए कि वहां घूम करके आओ। क्यों? वहां ज्यादा नेगेटिव आयंस होंगे, और जितने ज्यादा मात्रा में नेगेटिव आयंस हैं उतना व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा। हाँ, और वो हमने अभिषेक के दौरान नेगेटिव आयंस बना लिए, अभिषेक करते करते अपने आप ही इतने नेगेटिव आयंस बन गए, वो हमारे शरीर से टकरा कर करते क्या है नेगेटिव आयंस? हमारे शरीर में निरंतर हीमोग्लोबिन की प्रोसेस होती रहती है, हीम और ग्लोब, हीम तो ब्लड को कहते हैं, ग्लोब उसकी प्रोटीन को कहते हैं, और उसके अंदर ये प्रक्रिया होती है कि ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये प्रक्रिया रक्त में निरंतर चलती रहती है, और नेगेटिव आयंस जहां होते हैं पर्याप्त मात्रा में, वहां ये प्रक्रिया बहुत आसानी से चलती। इसलिए कई बार जब अपने को तकलीफ होने लगती तो गहरी सांस लेना पड़ता है, उबासी आती है। क्यों आती उबासी? गहरी सांस लेने के लिए। छींक आती, क्यों आती है? सांस थोड़ी कम हो गई, छींक ले लो, सांस ज्यादा अंदर चली गई। ये अपने आप होने वाली क्रिया है, इसको अपन करते नहीं अपनी तरफ से, ना छींक ना उबासी, ये सहज रूप से होती है। कब होती है? जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भीतर ज्यादा बढ़ गई है, ऑक्सीजन कम हो गई, साइंस की भाषा में, तो अपने आप छींक आएगी या उबासी आएगी और पर्याप्त मात्रा में, और हीमोग्लोबिन की प्रोसेस प्रॉपर हो जाएगी, बताइए। और वो वहां पर जो गंभारा है, गर्भगृह है, जिसको हमने मंदिर में एक विशेष स्थान बना रखा है, मूर्ति के चारों तरफ घेर दिया है, ऐसे हॉल नहीं बना देते उसको, तो अभी भी जो पुराने मंदिर हैं उनमें गर्भगृह है, बाहर खड़े होने के लिए सभा मंडप है और उसके बाहर पैर धोने के लिए एक दहलान है। ये तीन पोर्शन मंदिर में होते ही है, और उस गर्भगृह में शुद्ध वस्त्र पहन के ही जा सकते हैं और सब नहीं जा सकते, उसकी शुद्धि अनिवार्य है। वहां पर गर्भगृह में उनका कहना कि अभिषेक के दौरान ट्यूबलाइट जलेगी तो आयनाइजेशन नहीं होगा, विद्युत की कोई भी चीज वहां होगी वहां आयनाइजेशन नहीं होगा, अगर दीपक जल रहा होगा तो आयनाइजेशन प्रॉपर होगा। और वहां पर विशेष प्रकार से जो चंदन की गंध है वो होगी तो आयनाइजेशन, क्योंकि चंदन जो है नमी को बनाए रखता है और वो आयनाइजेशन में मदद करेगा, बताइए। इस तरह यदि अभिषेक की प्रक्रिया को करें तो आयंस हमें मिलते हैं, और वे हमारे शरीर को, देखिएगा, मन को स्वस्थ बनाने के लिए हमारी भावनाओं की निर्मलता, और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए डाला हुआ जल भगवान की मूर्ति पर। और अब जो लोग बाहर खड़े हैं बेचारे, उनकी सुविधा नहीं है, वे देख भर रहे हैं अभिषेक, उनको कौन सा लाभ?
रिकॉर्डिंग करता है चंचल, लाइट डेकोरेशन भवन मंडी, हर प्रकार के विज्ञापन के लिए संपर्क करें, धन्यवाद।
पूरी प्रक्रिया में तो चमड़ ढोड़ते हैं, और चमड़ ढोड़ते हैं तो क्या होता, वो आयंस जो है वो गर्भगृह के भीतर जितने,
वो एनर्जी वाटर है,
आधे घंटे तक रहेगा वो, उसकी मर्यादा है 48 मिनट है, लेकिन कैलकुलेशन किया गया कि आधे घंटे तक तो वो चार्ज वाटर है, उसमें आयंस रहेंगे और वो माथे पर लगा लिया। अगर हम उस प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं तो आधे घंटे के भीतर भीतर उस जल के द्वारा भी उतना ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो कि इस अभिषेक की प्रक्रिया से लाभ प्राप्त होता है। और तुरंत अगर अभिषेक देख के ले उसका जल, तब तो फिर तो सौभाग्य। ये प्रक्रिया इस तरह से अभिषेक की रखी गई। बहुत सारे लोगों से अगर मैं अभी पूछूं कि कभी अभिषेक किया एक आध बार, तो कई लोग इसमें निकल आएंगे जिनने कभी एक भी बार अभिषेक नहीं किया होगा, जिंदगी निकल गई। हाँ, कई लोग निकल आएंगे। इन लोगों को, मां लोगों को तो परमिशन बहुत है नहीं, एक परंपरा है जिसमें परमिशन नहीं है, एक परंपरा है जिसमें है परमिशन। जिसमें परमिशन नहीं है तो उस दृष्टि से देखें तो उनने तो नहीं किया होगा, लेकिन यहां है जो जिनको करने की पूरी छूट है, जब चाहे तब कर सकते हैं, उनमें से पूछता हूं कि किनने आज तक भगवान का स्पर्श किया और भगवान का अभिषेक किया। कभी बोली ली होगी अकड़ में आकर के और हाथ लगाया होगा। हाँ, बस ऐसे बोल रहा हूं, कभी ली होगी बोली, जब कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा होगा तब ली होगी। बाकी ऐसे कभी कभी हर्षित होकर के मन में कि आज मैं भगवान का स्पर्श करने जाऊंगा, क्योंकि दो ही तो अवसर हैं भगवान को स्पर्श करने के। जब हम उनका अभिषेक करने के लिए तत्पर होते हैं तब स्पर्श करते हैं, और अंतरंग में जब हम उनके गुणगान करते हैं तब भी भगवान का स्पर्श करते हैं, निकट से हृदय से उनका स्पर्श कर रहे हैं और शरीर से उनको छूते हैं। मुझे अपने जीवन की वो घटना भूले नहीं भूलती जब मैंने पहली बार जीवन में अभिषेक किया था। पहले एक छोटी सी बात आपसे कह दूं इस मंदिर के महत्व को लेकर के, उस स्थान के महत्व को लेकर के, फिर वो अभिषेक के महत्व की बात आपको बता करके, और आज अपन इतनी ही बात करेंगे। फिर जो द्रव्य हैं वो कैसे अरेंज की गई, उन सबके पीछे क्या साइंस है, वो सब अपन फिर करेंगे बात। एक जंगल में खंडहर था, लोगों को यही मालूम था कि वो खंडहर है, वहां लोग जाने पसंद ही नहीं करते थे। एक चोर ने अपने जीवन का संस्मरण लिखा था, कई दिन उसने वो अनुभव करके लिखा कि जब जब वो रात में चोरी करने निकलता था तो दिन में तो कभी उस तरफ गया नहीं, वो उस खंडहर में, उस खंडर के पास से रात में निकलता था चोरी करने के लिए जब भी। तो उसने लिखा कि जब जब मैं उस खंडर के पास पहुंचता था, उसके सामने पहुंचता था, तो मेरा मन होता था कि लौट चलो, ये अपराध मैं क्यों करूं, ये पाप अपने ऊपर क्यों ला दूं, ये ठीक नहीं है। और जब मैं उसको क्रॉस कर जाता था तो फिर मेरे भीतर वही भावनाएं हो जाती थी कि क्या फर्क पड़ता है, चोरी तो कर लेता हूं। लेकिन उतनी देर जितनी देर उस खंडर के सामने से गुजरता था मेरा मन जरूर बदलता था। मेरे मन में बहुत बहुत बार विचार आया कि क्या करूं, क्या बात है यहां पर कि यहां पहुंचता हूं और हमेशा मन बदल जाता है। एक आध दिन में जाकर के देखेंगे उस खंडर की स्थिति क्या है। तो दिन में एक बार वो खंडर के पास गया, चारों तरफ से देखा, भीतर जाने के लिए प्रवेश करके कोशिश करके भीतर गया, टूट फूट गया था, पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ था, उसको क्रॉस करके भीतर गया तो वहां जाकर देखा कि भगवान की भले ही टूट गई है प्रतिमा, लेकिन अभी भी वहां पर प्रतिमा है। तब उसे समझ में आया कि ये खंडहर ऐसा नहीं है, ये जिनालय रहा होगा। खंडहर हो जाने के बाद भी उस जिनालय की पवित्रता वहां से गुजरने वाले को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। फिर तो ये जिनालय, ये तो साक्षात जीवित है अभी, वो तो खंडहर हो गया, वो भी पवित्रता का संदेश दे रहा है। और इनके सामने से एक पंडित जी हुए हमारे, बड़े पंडित जी उनको कहते थे सागर वाले, तो वो हमेशा कहा करते थे कि भैया मन बनने जा पाओ तो कोई बात नहीं, अब का करत हम का कहें आपसे, वैसे तो जाओ चाहिए, मन उन्ने हो तो अपने काम से मंदिर के सामने से निकल जाओ, करे इतना ही कर लो भैया कृपा, अपने काम से ही मंदिर के सामने से निकल गए, मंदिर ने जाओ चल। उनका आशय यह था कि वो जो मंदिर के सामने से गुजरने की प्रक्रिया है वो भी हमारे मन को पवित्र करे। और अभिषेक की प्रक्रिया कैसे पवित्र करती, मैं आपको वो उदाहरण अपने जीवन के ही बताऊं। 1977 की बात, और मुझे तो पूजन करने भर का शौक था, तो पूजा करने पहुंच जाता था, समय से पूजा करने पहुंचता था, डेढ़ घंटे मुझे लगता था, एक ही पूजा करता था केवल रवि किरणों की। उस समय ये प्रपंच नहीं मालूम था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आज तो बड़ा प्रपंच है कि ये पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग उस वोट डालेंगे उसके पक्ष में, कुछ लोग कहेंगे नहीं, विवाद का विषय नहीं थी उस समय। उस समय तो पूजा पूजा थी, पूजा क्या विवाद का विषय हो सकती कभी। लेकिन आज की बात अलग हो गई, आज तो बहुत ज्ञानवान लोग हैं तो सब अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं। अपन तो उसमें अपने को ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं थी, अपने को तो ये लगता था कि बस पूजा करनी है, अपने भाव लग जाते हैं। जिस पूजा में जिसके भाव लग जाए वो पूजा उसके लिए महत्वपूर्ण, और डेढ़ डेढ़ घंटे में वो पूजा पूरी होकर के मैं वापस लौट जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं पूजा के लिए पहुंचा तो अभिषेक नहीं हो पाया था, और अभिषेक के बिना पूजा कैसे शुरू कर दें। पुजारी जी से कहा कि भैया जल्दी करो, केले अब इतनी सब वेदी कर हैं, जब आपकी आखिरी वेदी पे, हम आखिरी वेदी पे करते थे, नैमिनाथ भगवान थे। तो केले भैया आप तो समय से बिल्कुल रोज आते हो, आप हमारी थोड़ी मदद कर दो, हम उतर से प्रक्षाल कर वो शुरू करें सब भगवान को, आप इतने से करो तो जल्दी हो जाए, हमारा भी काम आसान हो जाएगा। हमने कहा भैया अपन से नहीं होता ये अभिषेक, अभिषेक नाम ने कभी किया है कि ले करो तो कहूं करना क्या है, पहले कुछ नहीं, ये सूखा कपड़ा है सो इससे पहले भगवान को पहुंच देना, फिर गीले कपड़े से पहुंच देना। अब बड़ी प्रतिमा जी का तो ऐसा ही अभिषेक होगा, फिर बाद में जो हम जल धारा करेंगे तब वो अलग बात है, आप अपनी कम से कम इतना करके और शुरू कर दें पूजा, फिर जलधारा होगी तो बीच में कर लेंगे। ठीक है इतना कर देते हैं। तीन सीढ़ियां चढ़ करके भगवान के पास पहुंचना होता था, वेदी ऊंची थी, भगवान भी लगभग पद्मासन की 5 फीट के लगभग की प्रतिमा जी थी। तो अब बहुत हिम्मत करके चढ़े, वैसे अपने घर की सीढ़ियां चढ़ जाएंगे 50 ठो, लेकिन उस दिन वो तीन सीढ़ियां चढ़ने में पैर कांपने लगे। जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर चढ़ के वो भगवान के पास तक पहुंचे तो थर 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 कांपने लगे कि अब क्या होगा, कुछ गलती ना हो जाए। फिर पहुंचा भगवान को, अब जो भी प्रक्षाल की प्रक्रिया थी 27 बार नमोकार पढ़ना था, सोन ने बता दिया था कि इतना पढ़ लेना, और तो कुछ आता नहीं था, उतना पढ़ करके और अभिषेक करके और नीचे आ गए, पसीने पसीने पूजा शुरू करी। पूजा के बीच में ख्याल आए कि इतने भयभीत होने की क्या आवश्यकता थी, और ये प्रक्रिया है कैसी कि मैं अभी भी भूला हूं सब कुछ, कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा कि क्या किया मैंने क्या नहीं किया। बहुत जब ध्यान करके मैंने सोचा कि मैंने क्या किया था, पाषाण ही तो था, लेकिन जब भगवान को पहुंच रहे थे तब कैसा लग रहा था, मानो साक्षात भगवान हो, तो पहुंचते समय आंख के पास धीरे से क्यों पहुंचा था और पैर को जोर से क्यों पहुंचा था। इसीलिए कि धीरे से पहुंचो, भगवान की आंख है जोर से लग जाएगी और पैर तो थोड़े जोर से पहुंचा जा सकता है। उन क्षणों में ये अनुभूति मैं आपसे कह रहा हूं कि भगवान की प्रतिमा गायब हो जाए और भगवान साक्षात वहां विराजे हुए हैं, ये अनुभूति जिस क्षण में हो वो है अभिषेक की प्रक्रिया, जो हमारी भावनाओं को इतना मृदु, इतना कोमल और इतना निर्मल बना देती है। अब आज की प्रक्रिया जो भी हो, पर हमें जो वास्तविक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझ करके उसका लाभ लेना चाहिए। कोई कैसा कर रहा है ये वो जाने, हमें ऐसा करना चाहिए, और ऐसा लाभ भगवान के अभिषेक का अगर हम लेते हैं तो हमारे परिणाम जरूर निर्मल बनेंगे और हमें अपने जीवन के कल्याण करने का कम से कम भाव तो बना रहेगा, विचार तो बना रहेगा दिन भर की मैंने जिन हाथों से आज भगवान को स्पर्श किया है बेहाथ किसी की क्षति ना पहुंचाए। जिन हाथों से मैंने भगवान का स्पर्श किया उन हाथों से किसी को तकलीफ ना पहुंच पाए, जिस मुख से भगवान के गुणगान किए हैं उस मुख से किसी की निंदा और किसी को कटु वचन ना बोलने में आ जाए। अगर ये थोड़ी सी जागृति अपने मन में आ जावे तो ये प्रक्रियाएं हमारे पूरे जीवन को, लगती बाहर की क्रियाएं हैं लेकिन हमारे अंतरंग के परिणामों को बदलने वाली क्रियाएं हैं। इसी भावना के साथ कि अपन अपने लिए जो आचार्य भगवंतों ने क्रियाएं बताई हैं उनके पीछे जो भावना है उसको समझ करके क्रियाओं को करें, जिससे कि हमारा अपना सबका कल्याण हो। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह।
नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तब शेल नदी तट पर कर कर वर्षाती गरियों में,
समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनाश्वर मणियां, निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, मिथ्या तमनास वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर वास वेखो मानु शिव कानी है, अनुभवताय वेखो जीवों के जताय वेखो काहू न सताय वेखो भव्य और आनी है, जावानी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो, रवन मंगल गान रवा कुले दिन कहे मुनि राग वहां,
प्रसुप जल से चरण पखारू गंधो तक से भाग सवारू, मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए, आत्म आत्म तिष्ठो तिष्ठो मन वचन काया की शुद्धि, प्रसुप जल से चरण पखारू गंधो तक से भाग सवारू, मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए, आत्मन की कही न जाए जन्म के फल पल में पाए, मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए, कई दिनों से थी अभिलाषा कई दिनों से थी अभिलाषा, धन हुआ पर हमारा पूरी हो गई आज आशा, कई दिनों से कई दिनों से थी अभिलाषा, धन हुआ परिवार हमारा पूरी हो गई आज आशा, धन हुआ परिवार हमारा पूरी हो गई आज आशा, हंसी खुशी आहार को देकर पुण्य के भंडार भरे हैं, चाहे निर्धन या धनवान सबके चौके एक समान, मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए, आत्मन जाए जन्म के फल पल में पाए, मेरे चौके गुरुवर आए मेरे चौके गुरुवर आए मेरे चौके गुरुवर आए मेरे चौके गुरुवर आए, मेरे चौके गुरुवर आए।
मिश्री त्यागे नमक त्यागे फल करे रस पांड त्यागे मिश्री त्यागे नमक त्यागे फल करे रस पांड त्यागे मीठा त्यागे मेवा त्यागे मीठा त्यागे मेवा त्यागे मिश्री त्यागे नमक त्यागे फल करे रस पांड त्यागे मिश्री त्यागे नमक त्यागे फल करे रस पांड त्यागे घंटे चौबीस ने एक बार मेरे गुरुवर ले आहार दिन में ही आहार लेते दाल संग रोटी ही लेते मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए आत्मन की कहीं न जाए जन्मों के पल पल में पाए मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए शुद्ध जल से चरण धुलाऊं मन बचतन की शुद्धि बताऊं शुद्ध जल से चरण धुलाऊं चौकी चंदन की मैं बिछाऊं चौकी चंदन की मैं बिछाऊं मन बचतन की शुद्धि बताऊं शुद्ध जल से चरण धुलाऊं मन बचतन की शुद्धि बताऊं शुद्ध जल से चरण धुलाऊं पड़गाहन की क्रिया करूं मैं शुद्धि का ही भाव धरूं मैं गंदोदक माथे पे लगाऊं चौके में मैं बलि बल जाऊं मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए आत्मन की कहीं न जाए जन्म के फल पल में पाए मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए मेरे चौके गुरुवर आए चौके में आहार है पाए
ओ पहले मुनि बल फिर एलक ओ पहले मुनि बल फिर एलक संग उनके चल छुलक आहार को चले एलक छुलक सभी आहार को चले आत्रो आत्रो दिष्ठ दिष्ठ चौके में सब श्रावक पड़गाहन को खड़े मुनि आहार को चले मुनिवर एलक छुलक सभी आहार को चले कर पड़गाहन कहो स्वामी उचासन ग्रहण करो फिर चरण पखारो मुनिवर के फिर अष्ट द्रव्य से पूजन हो मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आत्मा शुद्धि लगे मुनिवर को भले सभी आहार को चले मुनिवर एलक छुलक सभी आहार को चले जो श्रावक इनको दे आहार, उसमें गुड़ हो और भक्ति अपार। पहला गुड़ श्रद्धा भक्ति हो, संतोष विवेक और क्षमा भी हो, हो उदारता और शक्ति, कर लो रे ऐसी युक्ति, मुनिराज जी चले सभी आहार को चले, मुनिवर एलक छलक सभी आहार को चले। खड़गासन में लेते आहार, घंटे चौबीस में एक बार, हरी सब्जी कभी न लेते वो, बस दाल और रोटी तो लेते, मीठा वो नहीं खाते, फल मेवा नहीं भाते, आहार को चले छलक सभी आहार को चले। पहले मुनिवर फिर एलक, संग उनके चल छलक आहार को चले, सभी आहार को चले, मुनिवर एलक छलक सभी आहार को चले। आतो आतो तिष्ठ तिष्ठ चौके में सब श्रावक, गाहन को खड़े मुनि आहार को चले। चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी ¡Gracias!
भगतों की यादों में, ओ भगतों की